Ah, ja. 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. तो कुछ दिनों में आप सब भक्त गौर पूर्णिमा उत्सव मनाएंगे, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस। हम सब भक्तों के लिए ये सबसे अधिक दयालु अवतार या सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है। अभी अभी हम गा रहे थे कि गाओ गाओ पुनः गौरांगेर गुणा सरल करिया मन, ये भवसागर है एमन दयाल ना देखिए के जन। इस भवसागर में विशेष करके इस कलयुग में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, वैसे वैसे धर्म के जो चार पिलर हैं वो नष्ट होते जाते हैं। धर्म के चार पिलर कौन से हैं? सत्य, दया, तप और पवित्रता। तो इसमें दया जो है वो कलयुग में धीरे 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 इतनी बुरी तरह से नष्ट हो गई कि आज आपको दया सामान्य लोगों के भीतर तो मिलेगा नहीं इतना। और दया एक ऐसी वस्तु है, भगवान की कृपा शक्ति एक ऐसा स्वरूप है कि वो किसी का भी उद्धार कर सकती है। कोई भी व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, कितना भी अपराध और पाप किया है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं। हमने इतने पाप किए हैं हमारे जीवन में और हमारा माइंड भी डिस्ट्रैक्ट रहता है हमेशा, ना माइंड विक्षिप्त रहता है। आप चाहो फिर भी आपका मन अलग अलग जगह भाग जाता है ना। आपका इच्छा है कि आप भगवान का चिंतन करते रहे, आपका इच्छा है कि आप आध्यात्मिक जीवन जिए, आपका इच्छा है कि आप भक्ति में आगे बढ़े, लेकिन आपका मन जो है वो आपकी बात नहीं मानता है। और मन जो है वो क्या करता है, हमें ऐसे ऐसे जगहों पर ले जाता है जो सुनने में दिखने में रुचिकर लगे आपको। जैसे समझ लो कि मन का स्वभाव है कि वो चंचल है, जैसे ये बच्चा है, ये बच्चा चंचल है, बच्चा कभी स्थिर नहीं बैठ सकता, अगर स्थिर बैठेगा तो सब परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि इसका नेचर ऐसा होना चाहिए कि वो चंचल है, अगर वो शांति से बैठेंगे तो आप हम सब परेशान हो जाएंगे, देखें क्या हो गया इनको। लेकिन अगर वो चंचल रहेगा तो उसको कुछ प्रवृत्ति चाहिए, कुछ एक्टिविटी चाहिए। देखो अभी अभी चबा रहे, अभी इनको उसमें कोई प्रसाद, कोई नमक नहीं है, नींबू नहीं है, है ना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन निरंतर व्यस्त रहने का स्वभाव है बच्चों का, निरंतर व्यस्त रहते वो। तो ये मन की तरह है, वो निरंतर व्यस्त रहता है, निरंतर। एक सोचिए कि कैसा एक सॉफ्टवेयर है आपके शरीर में कि पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक निरंतर काम करता है बिना थके, हैंग भी नहीं होता है प्रोसेसर, है ना, बिना थके नॉनस्टॉप काम करता रहता है। और रात को भी सब जगह सब लोग सो जाते हैं, शरीर सो जाता है, इंद्रियां सो जाती है, लेकिन वो सपने में आपको ले जाता है, आपको दूसरी दुनिया दिखाता है, तो ये मन निरंतर व्यस्त रहता है और यही मन हमें निरंतर विक्षिप्त करता है और हम ऐसे कर्म में फंस जाते हैं कि हम कई बार, पता नहीं आप सब भक्तों को ये अनुभव होता है कि नहीं, लेकिन कई बार कुछ भक्त हमें हमेशा कहते हैं, अनुभव है भक्तों का, कि कुछ भक्त अपने आध्यात्मिक जीवन से, आध्यात्मिक जीवन को लेकर थोड़े निराश होते, दुखी होते, चिंतित होते हैं। किस बात की चिंता होती है उनको?
ग्रोथ डेवलपमेंट,
मेरा आध्यात्मिक विकास क्यों नहीं हो रहा है, मेरा मन जो है वो भगवान के या गुरु के चरणों में स्थिर क्यों नहीं हो पा रहा है। ये चिंता करना या ये विचार करना एक बहुत अच्छी निशानी मानी जाती है। जो भक्त इस तरह का चिंतन करता है उसको आगे बढ़ने का ग्रोथ हो सक, उसका जगह है, उसका स्कोप है, वो बढ़ सकता है। भूखा व्यक्ति ही भोजन बना सकता है, या भूखा व्यक्ति ही भोजन के लिए प्रयत्नशील हो सकता है। जो जिसके पास धन नहीं होता है उसके लिए धन की कीमत होती है। इस तरह से जिसके पास भगवान की कृपा या भगवान की भक्ति प्राप्त ना हो उसके लिए भगवान की भक्ति और कृपा दोनों का ही महत्व होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है, समस्या ये है कि चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके हमें भक्ति को इतना आसान बना दिया, वो कुछ कई बार हम सोचते हैं कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही आसान बना दिया है, ताकि हम उसका महिमा ही समझ नहीं पा रहे। कोई वस्तु अगर आपको इतनी सुलभ हो जाए, महाप्रभु ने बहुत सुलभ करके दिया है भक्ति, तो हम अभी भक्ति का जो दुर्लभ का जो स्वभाव है वो भूल गए कि भक्ति तो दुर्लभ है, किसी को मिलती नहीं। सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिस्वपी महामुने, करोड़ों करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति को भक्ति प्राप्त होती है। क्या वो श्लोक क्या था पूरा श्रोतवास से? मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, आई फॉरगॉट इट, तो अनेक अनेक मुक्त, अनेक अनेक सिद्ध में भगवत भक्त बहुत ही रेयर होता है। करोड़ों कर्मियों में एक कोई ज्ञानी श्रेष्ठ होता है, करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक योगी श्रेष्ठ होता है, करोड़ों योगियों में कोई एक मुक्तात्मा बनता है, सिद्धात्मा बनता है, ऐसे करोड़ों मुक्तात्माओं में कोई एक भक्त बनता है, करोड़ों मुक्तात्माओं में। इतना आसान नहीं है भक्ति स्वीकार करना, क्योंकि हम मानते हैं कि भक्ति कोई ऐसी वस्तु है जिसको हम बाजार से खरीद सकते हैं या जिसको मुंह में डाल सकते हैं। भक्ति का अर्थ होता है निरंतर भगवान की सेवा के लिए तैयार रहना, या सेवा में व्यस्त, क्या बोलते हैं, एंगेज रहना, सक्रिय रहना। तो ये भक्ति का जो विधि है उसको हमें बहुत सावधानी से ग्रहण करना चाहिए। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा वंदो मुनि सावधान मते, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, आध्यात्मिक गुरु के जो चरण है वो आपकी भक्ति को, भक्ति का खजाना है, वहाँ से आपको भक्ति मिल सकती है। और वंदो मुनि सावधान मते, सावधान होकर के उनकी, उन चरणों की वंदना करनी चाहिए सावधान होकर के। इसलिए नित्यानंद प्रभु तो सबको ये बांट रहे हैं कृपा, चैतन्य महाप्रभु तो सबको बांट रहे हैं कृपा, लेकिन कुछ अभिमानी हमारे जैसे कि हमारे अपने बल से हम अपनी जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। कुछ यू नो ऐसे मोहवश जीव ये सोचते हैं कि वो सारी समस्याओं का हल वो खुद कर सकता है। वो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की कृपा को ठुकरा देता है। कई बार भक्ति में जुड़ने के बाद दीक्षा या ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद भी भक्त अपनी निजी शक्ति पर थोड़ा भरोसा रखता है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तभी तब तक वो पूर्ण रूप से शरणागत नहीं है। शरणागत का अर्थ तो जैसे द्रौपदी ने एक हाथ से पकड़ कर रखा अपने साड़ी के पल्लू को और दूसरे हाथ से हाथ उठाए, तो ज्यादातर भक्त उस अवस्था में होते, एक हाथ से साड़ी के पल्लू को पकड़ते और दूसरे हाथ से हाथ उठाते भगवान के लिए पुकारते। तो यू नो प्रेजेंट सिचुएशन में मैक्सिमम ड्यूटीज इस प्रकार के होते, वो साधन भक्ति का अनुसरण करते, माला का जप करते, ग्रंथों को पढ़ते, प्रचार सेवा करते हैं, सब सेवा करते हैं, लेकिन एक हाथ से पल्लू पकड़ के बैठे अपना, तो वो पूर्ण रूप से शरणागति नहीं होती। और जैसे जैसे समय जाएगा वैसे वैसे भक्त को ये साक्षात्कार होता रहता है जीवन में कि वो स्वयं कुछ नहीं कर सकता। उसको इतनी सारी समस्याएं आती है, इतनी सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि भगवान बताना चाहते, उसको दिखाना चाहते, कन्विंस करना चाहते कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम मेरी कृपा पर आधारित हो। और हम मानेंगे नहीं तो टाइम लगेगा मनवाने के लिए, उतना टाइम आपकी लाइफ में से चला जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि हमारे जीवन के हर एक मोड़ के लिए, हर एक वस्तु के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु की दया के लिए भीख मांगनी चाहिए। गाओ गाओ पुनः गौरांग रघुण सरल करिया मन, मन को सरल करके चैतन्य महाप्रभु के गुण को पुनः पुनः गाना चाहिए। सरल करिया मन का अर्थ होता है कि हमें डिप्लोमेटिक नहीं बनना चाहिए। सरल करिया मन का अर्थ होता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ तो हम ऐसे ही बोल देते हैं ना, जैसे कई बार तो हमें पता ही नहीं कि कब हम झूठ बोले कब सच बोले, इतना कॉमन हो गया है झूठ कलयुग में।
ब्रीदिंग मिस
अब एक बार भी कोई सोचता नहीं, अब तो झूठ बोलने के समय एक बार भी सोचता नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। सो ब्लंट, एकदम से सिंपल, जैसे जैसे वेद वाक्य बोल रहा हो वैसे सिंपल एकदम। तो गाओ गाओ पुनः गौरांगर गुण सरल करिया मन, मन को सरल करो। मन को सरल करने का दूसरा अर्थ ये भी है कि अपने आप को निसहाय मान करके भगवान के चरणों में आश्रय लेना। हमारे जीवन सदा पापे रह तो नाहीं का पुण्य रलेश, भक्तों ठाकुर कहते हैं कि मेरा जीवन में बचपन से लेकर पूरा जीवन मेरे जीवन में केवल पाप ही भरा है और कुछ पुण्य का तो ढूंढने पर भी नहीं मिला, नाहीं का पुण्य रलेश। और अंत में कहता कि वार्धक्य एखन, वार्धक्य का अर्थ होता है बुढ़ापे में, जब बुढ़ापे में जब शरीर काम नहीं कर रहा है, आंखें काम नहीं कर रही है, इंद्रियां काम नहीं कर रही है, उस समय मुझे भान हुआ कि मैंने तो पूरा जीवन बिगाड़ा। और कलयुग में तो बुढ़ापा भी जल्दी आता है ना, बड़ी तेजी से बुढ़ापा आ जाता है। तो क्या करेंगे अगर आपकी इंद्रियां कमजोर हो जाएगी। आप देखिए ये प्रकार, इस प्रकार का भाव भक्तिवंत ठाकुर का जो भाव है, अपने आप को सबसे पापी मानने का भाव, ये भाव जो है ये भक्तों के लिए अनुकूल होता है। और ये सुपरफिशियल नहीं है, ऐसे नहीं कि गायन लिखने लगे तो कुछ तो लिखे, कुछ कैची टॉपिक लिखे, ऐसे ये कोई कैची टॉपिक लिखने के लिए उन्होंने ऐसा नहीं लिखा था। ये अपना भाव मनोभाव वो लिख रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के जितने भी भक्त हैं उन सारे भक्तों में विनम्रता का जो गुण है वो सबसे प्रबल है ना। वो भक्त चैतन्य महाप्रभु का भक्त नहीं हो सकता जो भक्त विनम्र ना हो। जो भक्त चैतन्य महाप्रभु का शरणागत है उसके खून में विनम्रता होगी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहा है त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिचेना। ये श्लोक हमने हजार बार सुना है, हजार बार पढ़ा है, इसका महिमा लेक्चर वगैरह सब सुना है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को तिनके से अधिक तुच्छ नहीं मान पा रहे, हम खुद कन्विंस नहीं है इस बात को लेकर के कि हम तिनके से तुच्छ है। तो ये समझना चाहिए कि गाओ गाओ पुनः गौरांगिर गुण सरल करिया मन, मन को सरल करके जीवन में आपको क्या चाहिए, और आप सोचिए क्या चाहिए, सुख चाहिए, लोग क्या कर रहे, सुखी तो ढूंढ रहे, और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हें सुख देने को तैयार हूं, तो तुम सुख लेते क्यों नहीं हो, तुम्हें सुख मैं दे रहा हूं तो तुम ले क्यों नहीं रहे, क्या समस्या है, नहीं मैं अपने बल से सुख लूंगा, तुम दोगे तो नहीं लूंगा, अपनी मेहनत की रोटी कमाऊंगा। लेकिन महाप्रभु इसका जवाब देते नहीं, तुम्हें नहीं मिल पाएगा, तुम प्रयास करो तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, तुम कितना भी मेहनत कर रोटी कमाओ लेकिन रोटी है नहीं तो कहां से मिलेगी, मैं तुम्हें ये दे सकता हूं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे मैं दे सकता हूं तुम्हें, तो क्या करना पड़ेगा फिर हमें, अगर आप कोई कहेगा सिंपल कुछ नहीं, हरि नाम का शरण लो, महाप्रभु ऐसा बोल रहे, चैतन्य महाप्रभु का शरण लो, अपराध मत करो, भगवान की सेवा में जुड़ जाओ बस, और इतना सरल जीवन बना के दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, लेकिन फिर भी हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, और इतनी बुरी तरह से हम कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन में भी भौतिक जीवन का अनुभव करने लगते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं हम। इसलिए हम सब भक्तों को जानना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो शिक्षाएं दी है, जो उन्होंने अपनी अनेक लीलाओं में ये बार बार घोषित किया है कि उनके पास ऐसा प्रेम है, ऐसा प्रेम किसी के पास नहीं है, चैतन्य महाप्रभु के पास ऐसी मोहिनी है चैतन्य महाप्रभु के पास कि कोई उनसे दूर नहीं जा सकता, हमेशा उनके साथ रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीलाएं आप सब भक्तों को ऐसे स्मरण है, फिर भी महाप्रभु ने बाल्य लीलाओं में बहुत जगह पर अपनी मोहिनी का प्रदर्शन किया, बिल्कुल कृष्ण लीला की तरह, और जब वो भक्ति का प्रकाश किया जब उन्होंने, तो उन्होंने श्रीवास आंगन में बहुत देर तक कीर्तन किए, 72 घंटे तक कीर्तन करते रहे, और जब महाप्रकाश लीला हुआ था तो महाप्रकाश लीला का अर्थ है कि उन्होंने स्वयं को भगवान घोषित करके अपने सारे भक्तों को वरदान दिए थे, जिसमें उन्होंने हरिदास ठाकुर को भी बुलाया था। हरिदास ठाकुर को क्या कहा था कि 22 बाजारों में तुम्हारी पिटाई हो रही थी तो तुम्हें चोट नहीं आई थी बिल्कुल भी, है ना, क्या कहा था, हाँ
तो जो चोट जो लग रही थी वो मैं ले रहा था।
तो महाप्रभु बताया कि ये जो कोड़े तुम्हें फिटकार रहे थे तो वो किसके पास जा रहा था, कौन उसको सहन कर रहा था,
महाप्रभु
स्वयं महाप्रभु। आप सोचिए हरिदास ठाकुर को कोड़े से पीटा जा रहा था और महाप्रभु, और ये ऐसा नहीं, ये नहीं सोचना कि हरिदास ठाकुर को कोड़े से मारा था और महाप्रभु ने अपने सिर पे ले, अपने पीठ पे ले लिया, लेकिन वो हरिदास था इसलिए, ऐसा नहीं है। अगर आपको भी, अगर आप पूर्ण रूप से शरणागत है, आपको कोई समस्या आएगी तो वो भी महाप्रभु अपने सिर पे ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो हरिदास को ही करते हैं ऐसा। आपको बहुत बड़ा संकट हो सकता है और अगर आप पूर्ण रूप से शरणागत हो महाप्रभु को तो वो संकट वो अपने आप पर ले सकते हैं और आपको बचा देंगे, ये तो उनका स्वभाव है, ये उनका नेचर है। हरिदास को उद्धार करने में, हरिदास की रक्षा करने में उन्होंने स्वयं कुछ नहीं किया था, ये तो उनका स्वभाव था चैतन्य महाप्रभु का। इसलिए उनका एक नाम है भक्त वत्सल। हरिदास ने सुना कि 22 बाजारों में पिटाई के समय कोड़े महाप्रभु ने ले लिए थे, तो उनकी आंखों में से पानी बहने लगा, हरिदास ठाकुर की आंखों में से। वो सोचे कि कितने कृपालु है। अगर आप सोचिए, जैसे ये तो हरिदास ठाकुर की एक एग्जांपल कि पिटाई हो रही थी उन्होंने लिया, और ब्रजवासियों के पास कितने एग्जांपल थे, कैसी कैसी समस्याओं से उनका रक्षा किया है ना। हाँ, अलग अलग असुरों से, अलग अलग संकटों से। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप सब भक्तों को, आप अपनी लाइफ एक बार चेक करके देखो, कैसी कैसी जगह पर भगवान ने आपकी रक्षा की है, कैसी कैसी जगह आपको बचाया है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, अंदाज नहीं लगा सकते कैसे कैसे बचाया है। आप जो बुद्धिशाली भक्त होता है वो समझ जाता है कि ये रक्षा भगवान ने किया है। आप अपनी लाइफ में देखो कैसे कैसे बचाया भगवान ने आपको। अगर आप देखेंगे तो आपको वही भाव होगा कि चैतन्य महाप्रभु, हम तो कुछ भी नहीं करते, हरिदास ठाकुर तो 300,000 नाम जप करते थे और नाम के आचार्य थे, लेकिन हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो उल्टा उनके आदेशों के विपरीत कार्य करते हैं, फिर भी हम पर कृपा कर रहे हैं। आप सोचिए कि कितने दयालु है चैतन्य महाप्रभु। तो दूसरे कौन थे, खोला बेचे श्रीधर। तो खोला बेचे श्रीधर को क्या उधार, क्या किस तरह से उधार किया उन्होंने। खोला बेचे श्रीधर को बुलाया, तुम आओ, क्या वर चाहिए मांगो। पहले तो पता ही नहीं था खोला बेचा रहता कहाँ है। तो कहाँ की, तो अपने भक्तों को कहाँ कि तुम जाओ खोला बेचा को ढूंढ के लेके आओ। और खोला बेचा मिलेंगे कहाँ, उनका नाम श्रीधर था, बोले श्रीधर मिलेगा कहाँ। बोले वो केले के पत्ते बेचता है, इसलिए उसका नाम खोला बेचा श्रीधर। खोला का अर्थ केला, केले के पत्ते, खोला बेचा श्रीधर। तो बोले कि तुम मिलेगा कहाँ। बोले जिस कुटिया में बाहर से हरी 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 आवाज आ रही हो, बोले वो खोला बेचा श्रीधर की कुटिया होगी। ये बात कहाँ पर हुई थी, शिवाशांगन में, अष्ट प्रहरी लीला बोलते इसको, महाप्रकाश लीला। तो शिवाशांगन से भक्त लोग पैदल चल के गए जगन्नाथ राजापुर सीमंत द्वीप, पैदल चल के गए, और वहां पर उन्होंने खोला बेचा, वहां पर गंगा नदी था थोड़ी दूर पास में ही, अभी तो थोड़ा दूर हो गया है, लेकिन उस समय गंगा पास में थी। तो उस गंगा के तट पर एक कुटिया थी जिसमें से हरी 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 आवाज आ रही थी, हरी। तो खोला बेचा को लेके आए, कहाँ खोला बेचा, तुमने पूरे जीवन मेरी बहुत सेवा किया, मैं तुम्हें बहुत सताया, वहां पर उनको बहुत सताते थे। खोला बेचा ऐसे विरक्त भक्त थे जिनकी छत नहीं थी कुटिया की, एक छोटा सा कुटिया था जिसमें छत नहीं थी, एक ही बर्तन था वो भी छेद वाला जिसमें छेद था, एक ही धोती थी जिसमें 11 छेद थे। तो ऐसे ऐसे भक्त थे विरक्त, और वहां पर आकर उनको कहते थे मैं जानता हूँ तुम्हारे, तुमने अपनी कुटिया में बहुत बड़ा खजाना छुपा के रखा है, सबको बता दूंगा मैं, ये खोला बेचा ढोंगी है। तो बहुत विनम्र भक्त थे, कहते नहीं नहीं प्रभु, मैं क्यों, मेरा आप मजाक उड़ा रहे हो। फिर उनसे मस्ती करते थे भगवान, परेशान कर, बोले कितने में दिया ये केला, बोले ये कहना, बोले इतना भाव होता है, तो लूट रहे हो तुम बाजार में सबको, बोले मैं तो इसका आधा दूंगा। तो महाप्रभु निवाए खोला बेचा, बोले तुम क्यों मुझे परेशान कर, दूसरे किसी के पास चले जाओ ना, और किसी शॉप में से ले लो, मेरे पास से क्यों लेते हो। बोले इतना अच्छा सप्लायर और कहाँ मिलेगा। तो इतने सस्ते दाम में देगा। तो बोले भगवान उसकी कई बार चुरा लेते थे, केले के पत्ते चुरा ले, केले चुरा लेते थे, लेकिन और लवेजा कभी भी कंप्लेन नहीं करते थे, और महाप्रभु से ऐसे निमाई जब छोटे थे तभी ऐसा करते थे उनसे। तो ये सब बात महाप्रभु ने बताई उनको कि हम ऐसा सब तुम्हें बहुत परेशान किया, मांगो तुम क्या वरदान मांगो, तो ब्राह्मण पत्नी दे दूँ एक, ऐश्वर्य इंद्र के समान, कोई बड़ा राजमहल चाहिए, सोना चाहिए, हीरे इत्यादि, तो मांगो क्या चाहिए, सिद्धियाँ चाहिए, अष्ट सिद्धियाँ योग की, मुक्ति चाहिए, मांगो क्या चाहिए। तो खोलवे जब बोले क्यों मजाक कर रहे हो प्रभु आप मेरी, अगर आप सच में कुछ मुझे देना चाहते हो तो एक ही वरदान दीजिए कि मैं जन्मों जन्मा केले के पत्ते बेचता रहूं और आप हर जन्म में इसी तरह से निमाय पंडित बनकर आए और मेरे केले के पत्ते चुराते रहे, ऐसा वरदान वो मांग रहे। आप सोचिए किसी को, अगर आपको किसी को ये वरदान मांगने को कहा जाए तो कोई ऐसा वरदान मांगेगा कि मेरे केले के पत्ते चुराते रहे? तो इसका अर्थ है कि महाप्रभु के पास प्रेम के सिवा और कुछ नहीं है, वो आपको निरंतर प्रेम दे सकते हैं, लेकिन हम इस प्रेम को ठुकरा रहे और सुख की खोज में इधर उधर भटक रहे। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम चैतन्य महाप्रभु की लीला, आप सब भक्तों के पास चैतन्य चरितामृत तो होगा ही, तो चैतन्य चरितामृत यशोमती नंदन प्रभु पढ़ते थे हर गौर पूर्णिमा से पहले, पिछले एक दो साल से उनकी हेल्थ नहीं अच्छी है इसलिए वो पढ़ना बंद कर दिया उन्होंने, लेकिन पहले हर साल पढ़ते थे वो। उनका उद्देश्य एक ही था कि वो खुद पढ़े और थोड़ा जोर से पढ़े ताकि किसी को सुनना तो सुने, नहीं सुनना है तो ना सुने, यही उनका उद्देश्य था। कई बार वो बता रहे थे कि अगर सुनेगा कोई तो उसको दो लीला कान में जाएगा, श्रवण होगा, नहीं सुनेगा तो भी उनको कोई शिकायत नहीं थी कि ठीक है नहीं सुनना है कोई बात नहीं, बोले मैं तो ऐसे भी अकेला आऊँगा तो भी पढ़ूंगा, भक्त लोग होंगे तो भी पढ़ूंगा। तो वो पढ़ते थे, लेकिन हमेशा वो कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत एक ऐसा खजाना है कि अगर कोई भक्त उसको पढ़ता रहता है बार बार तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। सब भक्तों को इसको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, चैतन्य चरितामृत जीवन में एक बार पढ़ने का चाहिए मिनिमम, कम से कम। कि श्रील प्रभुपाद भी बार बार चैतन्य चरितामृत पढ़ते थे, प्रभुपाद को जब भी कोई संकट का अनुभव होता था वो चैतन्य चरितामृत खोल कर पढ़ना शुरू कर देते थे। प्रभुपाद को कभी भी जब समुंदर में थे, जब उनको हार्ट अटैक वगैरह आता था, उनको अपने लेटर्स में आप पढ़ोगे, उनकी डायरी में सब जगह पढ़ोगे कि उनके जीवन का एक ही आधार था चैतन्य चरितामृत, श्रील प्रभुपाद जी के जीवन का, बस वही उनकी एक शक्ति थी जो उनको बार बार प्रचार के कार्य में लगाती थी। तो इसलिए हम सब भक्तों को चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए, जिनके पास नहीं है उनको उनको खरीद लेना चाहिए और उसका पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। तो आप सब भक्तों को अगली बार भी हम चैतन्य लीला के विषय में तो कुछ बताएंगे आपको, और फिर तो गौर पूर्णिमा आ जाएगी, बस अब एक बुधवार है, अगर अगली बार हम आपको संक्षिप्त में चैतन्य लीला या फिर नवद्वीप लीला कुछ बता सकते हैं आपको, हम कर सकते हैं परिक्रमा, लेकिन समय की के इस प्रकार की समय है, किस प्रकार का आधा पौना घंटा जो भी मिलेगा उसमें, हाँ उसमें लेकिन समय बहुत जाता है,
एक दो घंटे का सेशन
हम रख सकते हैं
फास्ट परिक्रमा,
या तो फिर कीर्तन के पहले एक घंटा एक सवा घंटा केवल परिक्रमा ही करेंगे, परिक्रमा के लीला स्थलों की चर्चा कर सकते हैं आप सब भक्तों के साथ,
लीला स्थल फास्ट
ऐसा कुछ करेंगे। So we stop here because time जा रहा है,
कीर्तन में मतलब मानसिक परिक्रमा
प्रयास करते हैं, 10:20 हो गया, we stop here।